वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, वो इस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं जिसको अल्लाह ने लानत ज़दा कर दिया, वो इस शैतान की इताअत करते हैं जिसने अल्लाह से कहा था मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा, मैं इनको बहकाऊंगा, मैं इन्हें आरजू में उलझाऊंगा, मैं इन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, और मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि वो मेरे हुक्म से अल्लाह की साख्त में रद्दो बदल करेंगे, और इस शैतान को जिसने अल्लाह की बजाय अपना वली और सरपरस बना लिया वो शरीफ नुकसान में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है और वो इनको उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे बजुस फरेब के और कुछ भी तो नहीं है। इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है जिनसे खुलासी की कोई सूरत ना पाएंगे। सवाल पैदा होता है कि नायात में शैतान के किन धोखों की बात है और शैतान हमें कौन से धोखे देता है? तो याद रखिए, शैतान का सबसे बड़ा धोखा क्या है कि गुनाहों के साथ जन्नत मिलेगी। लिख लें, यह आपको फायदा देगी मेरी बात। शैतान सबसे बड़ा धोखा जो इंसानों को दुनिया में आने के बाद देता है वो कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, डोंट वरी, फिक्र नहीं करो, तुम गुनाह करो वो गफूर रहीम है, वो माफी वाला है, वो नुक्ता नवाज है। ये शैतान का धोखा है कि गुनाहों से जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला तुम्हें देखना जन्नत दे ही देगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि शैतान और क्या हमें धोखे देता है, कहता है कि देखो सारी जिंदगी गुनाह कर लो, फिर अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोला रखा, तौबा कर लेना, हज कर लेना, तुम्हें नहीं पता हज से सारे गुनाह माफ होते हैं, और तुम्हें नहीं पता कि एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच के गुनाह रमजान के रोजों से माफ होते हैं, कोई बात नहीं गुनाह करो फिर रमजान आने वाला नेकियां करना, इस तरह की बातें कराता है। यानी शैतान हमेशा बंदे को गुनाह में डालता है, पहले धोखा क्या देता है, गुनाह करो गुनाह करो गुनाह करो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बंदा उसकी बातों में आके गुनाह कर लेता है। अब जब गुनाह करता है उसका गिल्ट आता है, दिल पे बोझ पड़ता है, तो वो तौबा करने लगता है, तो शैतान फिर नेक्स्ट अपना ट्रिक यूज करता है, कहता है देखो तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारी बख्शिश होनी है, तो जब गुनाह कर ही लिया तो और कर लो, आगे जाके तुम मार पड़नी है यही मौज कर लो। बाज लोगों की जुबान से ये जुमले सुनकर हैरत होती है, कहते हैं जो मौज करो आगे बता मैं बड़ी मार पड़नी है, जिसको पता लग जाए मार पड़नी है उसको इस दुनिया में चैन पड़ेगा? अल्लाह ना करे आपको मुझे लगे कि रात को हमारा ऑपरेशन होने वाला है तो हम यहाँ दुनिया में मौज मस्ती कर सकते हैं, कभी भी नहीं। तो ये सिर्फ शैतान का धोखा होता है। फिर आप देखिए कि इसमें शैतान के तख्लीक को तब्दील करने की बात है, तो सवाल पैदा होता है कि शैतान कैसे अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली कराता है? तो पहली बात है कि इंसान की फितरत में नेकियां करना है, शैतान उससे गुनाह कराता है, गुनाहों को ग्लैमरस करके दिखाता है, नेकियों को मुश्किल करके दिखाता है। फिर इसी तरह इंसान की तबीयत में है कि वो आखिरत के लिए मेहनत करे, अल्लाह ने उसकी इंस्टिंक्ट में डाल के और उसके जिसको आप कहना चाहिए कि इंसान के डाटा में ये फीड करके भेजा है कि इस दुनिया में जाओ, फइम्मयातियन्नकु मिन्नी हुदन फमन तबी खुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। आदम अलैहिस्सलाम के जिम्मन में यह आयतम पीछे पड़ चुके पहले बारे में कि इस दुनिया में जाओ मेहनत करो हिदायत की पैरवी करो फिर जन्नत मिलेगी, लेकिन शैतान क्या करता है, आखिरत से हटाकर दुनिया के लिए मेहनतें करवाता है, वो कहता है इट्स फाइन कुछ नहीं होता माफ हो जाओगे। फिर इसी तरह कुछ फिजिकली भी शैतान हमारे अंदर तब्दीलियां पैदा करता है, बस मैं कहता है देखो अल्लाह ने तुम्हारी कैसी शक्ल बनाई, इतनी मोटी नाक है तुम्हारी, कितनी भद्दी लगती हो, तुम तो बड़ी बुरी लगती हो, बदलाओ, और कभी जैपनीज नोज और कभी कुछ, यानी प्लास्टिक सर्जरी जो एक निसाब में उसको खैर बना दिया कि अगर किसी को कोई ऐसी कैफियत हो तो वो दुरुस्त करे, उसको कैसे गलत तरह से करता है, महज शौक की खातिर फीचर्स चेंज किए जा रहे हैं, महज आप देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी और जिस्म के उभार बढ़ाए जा रहे हैं। आज आप देखिए जितना साइंस तरक्की करती जा रही है उतने फितने हो गए, सिलिकॉन बैग्स औरतें जिस्म में रखवाती हैं ताकि उनका सीना भारी लगे, आप सोचिए सिलिकॉन जिस्म में फट जाएगा तो क्या होगा, इतनी खूबसूरती कॉन्शियस हो जाना, इतना ब्यूटी कॉन्शियस हो जाना, ये दुरुस्त तो नहीं है। हादसा हो गया, कोई तकलीफ हो गई, आप रिहैबिलिटेशन कर लें, इट्स फाइन नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह के काम करवा लेना जो गलत है। फिर आप देखिए सूरत निसा पूरी में हमें जो बात समझ आई कि मर्द कवाम और बेमानफक मिनम वाली ही में औरतें घर को संभालेंगी, आज शैतान ने बिल्कुल उल्टी गंगा चला दी, बिल्कुल उल्टी तरफ फेर दिया कि औरतें भी जब तक बाहर नहीं निकलेंगी हम तरक्की नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि बस दफा कुछ इस किस्म की चीजें करवा लेते हैं कि जिससे सिर्फ इस सोच के देखो अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो शौहर खुश नहीं होगा। इसी में एक बड़ा फेवरेट औरतों का शौक है, वो कहती हैं कि हम प्लकिंग करते हैं क्योंकि हमारे शौहरों को बड़ी पसंद है, और अगर प्लकिंग छोड़ दी ना तो तलाक हो जाएगी। सच बताइए आप, मैं, हम सब मैरिड है माशाल्लाह, क्या कभी किसी औरत को आज तक प्लकिंग छोड़ने पर तलाक मिली? और जो रिश्ता इतना कमजोर है चंद बालों पर टिका हुआ है उसमें खुशी कहाँ होगी? ये सिर्फ आपके मेरे अपने अंदर की बात है, क्योंकि इन आयात में उसका भी जिक्र आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाज़े रिवायत से ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों को अपनी रहमत से दूरी का कह दिया कि जो अपनी भवों के बाल मोड़ती हैं। आपके चेहरे पे बाल है, आप उतार सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिस्म के बाल है, आप उतार सकते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कोई नस नहीं। सिर्फ मसला सिर्फ इतने से चंद बालों का, और ये कोई इतनी बड़ा पहाड़ नहीं है। लोगों ने जान दे दी, सहाबा ने अपनी जानें काट ली, क्या हम अल्लाह के लिए अपनी चंद बातें नहीं काटते? और ये शैतान का फिर धोखा है कि सिर्फ इन चार बालों से तुम खूबसूरत लग रही हो। हालांकि आप खुद आजमा के देख लें कि 12-15 साल की बच्ची जिस दिन प्लकिंग करके आती है स्कूल में, वो 10 साल बड़ी लगती है। इनोसेंस खत्म, आपके चेहरे पे वो भोलापन नहीं रहता, फिर आपको नुकसान कितना। इतने नाजुक टिश्यूज हैं यहाँ के। तो बहरहाल हम उसकी वजह से तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शैतान सब करें क्या, आईना दूर से देखें। प्लकिंग जहां आप करते थे वहां ब्लीच कर लीजिए, और अपने आप से पूछिए कि क्या शायद यही नाफरमानी ऐसी तो ना हो जाएगी कि जो मुझे अल्लाह की नजरों में गिरा दे। किसकी नजरों में जचना? चले आप बहुत हसीन लगे, अल्लाह को कैसी लग रही हूं? चंद बातें करेंगे, और ये कब होंगी? अगर अभी हमें भी नहीं समझ आ रही तो डोंट वरी, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पे हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चा ईमान तो बंदे को मजबूर करता है कि वो अल्लाह की पसंद का बनने लगे, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उससे इतनी मोहब्बत हो जाए कि ये चंद चीजें, और ये हर वक्त जानकार हो गए, कहीं जाना हो सबसे पहले छुरियां कांटे लेकर खड़े हो जाएंगे। जा नहीं सकते भी, आ नहीं सकते भी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपने आप को रखा। याद रखिए, अल्लाह ने दुनिया में हमें खुद को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं भेजा था। इस दुनिया को खूबसूरत बनाओ, इसको साफ करो, इसको अच्छा रखो, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये शैतानी वादे हैं, और ऐसे वादे शैतान आगे भी बहुत सारे देगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इनसे बचाए। और आखिर में देखिए, वादा कितना प्यारा है कि अगर तुम अल्लाह की बात मान लोगे, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, रहे वो लोग जो ईमान लें और नेक अमल करें, तो हम इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिसमें नहरें बहती हैं। हदीस में आता है कि जन्नती औरत के जिस्म पर कोई बाल नहीं होगा, आपको कोई वैक्स की मुसीबत नहीं सहनी पड़ेगी, आपको कोई लेजर नहीं करवाना पड़ेगा। जन्नत की औरत को जन्नत में ले जाने से पहले अल्लाह ताला एक ऐसी नहर में से गुजारेंगे कि जिससे उसके बाल बन जाएंगे, आपके हेयर स्टाइल खूबसूरत हो जाएंगे। हर वक्त ये नहीं कि पहले तो बाल बनवा के आए, इतनी बिन्ने स्प्रे कराए, बाद में उसको निकालने में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन है। कर सकते हैं अगर आप कोई काम, लेकिन कितनी तकलीफ है ना दुनिया में। आप थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए कई हजार खर्च करते हैं कि हमें मेकअप कराना है, लेकिन वॉशरूम में ही जाता है सारे का सारा। जन्नती औरत की आंखों में सुरमा लगा होगा, एक दिन में 70 दफा कपड़े बदलेगी, और काम भी तो कोई नहीं है ना। आज काम कर ले, आज मेहनत कर ले, कल देखिएगा अल्लाह ताला आपको कितनी आसानियां देगा। कब तक होगा ये सारा रिजॉर्ट ट्रिप? खालिदीन फीहा बदा, हमेशा के लिए। जन्नत का दाखला कोई 1-2-4 दिन का पैकेज नहीं है, हमेशा रहेंगे, और ये अल्लाह का वादा है। इसको 3 दफा सोचें, वादल्लाही हक्का, वादल्लाही हक्का, ये अल्लाह का वादा है और सच्चा है। तो बताओ फिर, वमन अस्तक मिनल्लाही कीला, कौन सा अल्लाह से बढ़कर अपनी बात में सच्चा होगा? अब बताइए, शैतान के वादे सच्चे कि अल्लाह के वादे सच्चे? अब कुछ लोग हैं जो अपने दौर में यही सोचते थे, आज के मुसलमान भी यही सोचते हैं, कुछ भी कर लो देखना जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। चूंकि तुम मुसलमान हो, चूंकि तुम सैयद हो, तुम हाशमी घराने से हो, और तुम फलाह हो, तो अल्लाह कहते सॉरी, लई सभी अमानी जी को वला अमानी जी अहलिल किताब, इंजामे कार ना तो तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ है न अहले किताब की आरजुओं पर। अहले किताब ने अपने दौर में ये नारा लगाया था कि हम जन्नत में जाएंगे, पीछे पड़ चुके हैं। और आज का मुसलमान लगाता है जन्नत अगर आरजुओं पे मिलती तो कोई जन्नत से बाहर रहता? कोई है जिसको विश ना हो जन्नत में जाने की? वो लोग जो जन्नत को नहीं भी मानते, आप उनसे पूछेंगे डू यू वॉन्ट टू गो टू पैराडाइज, कहेगा यस। तो जन्नत आरजुओं से नहीं मिलती। चलिए दुआएं कर लेते हैं जन्नत की। जन्नत दुआओं से भी नहीं मिलती, किससे मिलती है? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो मुझे और आपको डिजर्व करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वी नीड टू शो कि हम इसको करते हैं। दुनिया में आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, आपको बहुत ख्वाहिश है मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, क्या आपकी ख्वाहिश पे मिल जाएगा? नो, यू नीड टू शो देम। सेम थिंग हमें दुनिया में ही दिखाना पड़ेगा। अब कैसे मिलेगी, उसका जवाब आगे मिल गया। वमन यअमल युज़्ज़बिही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलीयन वला नसीरा, जो भी कोई बुराई करेगा इसका फल पाएगा। सिर्फ इतनी आयत को पढ़े तो ऐसा लगता है हर गुना पे पकड़ोगे, और अल्लाह के मुकाबले में वो कोई हामी और मददगार ना पाएगा। और इसके बरक्स, वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन अव उन्सा, और जो कोई नेक अमल करेगा ख्वाब मर्द हो या औरत हो, बशर्ते के हो वो मोमिन, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और इनकी जर्रा बराबर हक तलफी न होने पाएगी। इस शख्स से बेहतर और किस का तरीका जिंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम में खम कर लिया और अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहिम के तरीके की पैरवी की। आपको लगता है ना कि अल्लाह ताला को इब्राहिम से बड़ा प्यार है, और ऐसे लगता है कि दीन इस्लाम की जो डीप रूट्स है ना वो इब्राहिम के दीन में घुसी हुई है। और इब्राहिम का तरीका सबमिशन का तरीका था, सबमिट कर दिया उन्होंने। वो अल्लाह के हुक्मों को सुनकर ये नहीं कहते थे ओके इफ आई विल नॉट डू देन, उन्होंने ये नहीं पूछा आई वॉन्ट टू डू बट आई कैंट, अच्छा ये फर्ज है सुन्नत है हराम है नफिल है अच्छा कबीरा है सगीरा है, बस जो उनको अल्लाह ताला कहते थे वो मान लेते थे। और अल्लाह हमें इसी की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने इब्राहिम को क्या किया, वत्तखज़ अल्लाह इब्राहिम खलीला, और जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और अपना नेक रवैया अख्तियार किया और यकसू होकर इब्राहिम के तरीके की पैरवी की, उस इब्राहिम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। आसमान और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है और अल्लाह ताला हर चीज पर मुहित है। अल्लाह से दुआ मिल जाए इनको रोल मॉडल बना लें, दैट्स इट, सारे काम आसान हो गए। देखिए रोल मॉडल अच्छा होता है ना तो काम करना भी आसान होता है। आगे एक आयत विरासत के मसाइल में से एक लेफ्ट ओवर आयत है कि बाज हालात में कोई भी नहीं होता, मरने वाले का ना बेटा है ना बाप है, यानी औलाद भी नहीं तो माँ बाप नहीं, इस सूरत में भाई बहनों को हिस्सा मिलता है। तो उसी के आगे एक आयत आ रही है, औरतों के मसाइल अब दोबारा शुरू हो रहे हैं। सूरत के शुरू में हमने देखा निकाह और उसकी चीजों को देखा, अब यहाँ कुछ और बातें हैं जो इंशाल्लाह हमें इसमें नजर आएंगी। वो क्या है, वयस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, लोग तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें इनके मामले में फतवा देता है और साथ ही वह अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं, यानी वह अहकाम जो इन यतीम लड़कियों के मुतल्लिक हैं जिनके हक तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बस रहते हो या लालच की बिना पर तुम खुद इनसे निकाह कर लेना चाहते हो, और यह काम इन बच्चों के मुतल्लिक हैं जो बेचारे कोई जोर जबरदस्ती नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ करो और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह से छुपी न रहेगी। माशरे का सबसे दबा हुआ तबका यतीम लोग, अल्लाह उनकी ऐसे वकालत करते हैं कि शायद दुनिया का कोई बेस्ट लॉयर किसी की वकालत करेगा। ये है कुरान का हुसन कि इसमें दुनिया का हकूक दिए गए। आज ह्यूमन राइट्स का बहुत गुलगुल है, जितने ह्यूमन राइट्स कुरान बताता है उतने कोई और नहीं बता सकता। आगे आयत नंबर 128 है, अब इसको थोड़ा सा देखे, बहुत सारी से इसको लगता है कि खुदा न खास्ता जो उनका ही इशू है। सूरत के शुरू में हमने मसाइल में पढ़ा कि जब औरत के मिजाज में बिगाड़ हो तो मर्द उसको कैसे समझाए, उसके स्टेप्स आपको याद होंगे, पहले प्यार से समझाए नसीहत करे, फिर थोड़ा सा उसे रूठ जाए घर में रहते हुए उसे जरा सा अलग हो जाए, फिर भी ना माने तो हल्की सी चपत लगा दे, फिर भी ना बात माने तो फिर तीन लोग बैठें किसी इधर उधर से और उनका फैसला कराएं। लेकिन अब यहां जो आयत है वो क्या कि अगर किसी का मर्द अच्छा नहीं है, कोई मर्द अपनी बीवी के हक पूरे नहीं कर रहा या उसमें कोई खराबी है तो उसको कैसे देखा जाएगा। वायनिमरातुन खावत में बालिहा नशूजन व इरादन फला जनाह अलैहिमा युस्लिहा बैनहुमा सुल्ह, अगर किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई हरज नहीं कि मियां बीवी कुछ हकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें, सुलह बहरहाल बेहतर है, नफ्स तंग दिल्ली की तरफ जल्द माइल हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन करो कि अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज अमल से बेखबर ना होगा। क्या पता चला कि बाज दफा हालात ऐसे हैं कि मर्द कहता है मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, बाज दफा बीच में कोई दूसरी औरत आ जाती है, बाज दफा औरत की अपनी को कमी है या कोई और रीजन हो सकती है। अब एक औरत है वो जिंदगी के उस दौर में जहां उसको लगता है कि मैंने आगे तो शादी करनी कोई नहीं, मुझे मिलना नहीं या मैंने बच्चों को लेना है तो तलाक लेके क्या करूंगी, तो मियां को कहती है अच्छा भाई जाओ तुम उधर रह लो शादी कर लो भी कर लो बस मुझे पड़े रहने दो, यानी तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से आजाद करती हूँ, तो एक किस्म का ये एग्रीमेंट होगा उसका जिक्र है। देखिए औरत अपनी तबीयत के एतबार और फितरत के एतबार से तलाक नहीं चाहती, उसको अच्छा नहीं लगता, और इंसान को हमेशा ख्वाहिश रखनी चाहिए। इसी तरह देखिए कि अगर किसी के शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है या वो उसके साथ बदतमीजी करता है या कुछ भी है तो फिर इसको इतना डिले करके इतना आगे जाकर दो चार बच्चों की माँ बाप बनने के बाद सोचने की बात नहीं है। आपको अगर अल्लाह हिकमत है तो फैसले पहले ही अच्छे करें, बच्चे बच्चियों के रिश्ते करते वक्त अच्छे करें। अल्लाह ना करे शादी के बाद कोई पोल खुलता है तो फिर अगर तो वो रिक्योरेबल है तो कर लीजिए, इसलाह करें, वक्त दें, दीन से जोड़ें। अगर दीनी बिगाड़ है, नमाज रोजा नहीं है, करप्शन है, खराबी है, दो तीन महीने का टाइम दें, रहते हुए साथ सोच लें। लेकिन अगर लगता है कि आदि मुजरिम है, ये कभी छोड़ेगा नहीं, ये होगा नहीं, तो फिर जाया ना करें। जहां एक बच्चा बीच में आता है बस वो फितरत का एक खामोश इशारा कि अब इस घर को बनना ही है, तोड़ना नहीं है। तो इन आयतों पर हम बहुत डिटेल से बात करते हैं कि घर को तोड़ना नहीं जोड़ना, और याद रखिए कि हर एक को बहुत नेक शौहर नहीं मिलते, हम सब एक ही जैसे होते हैं। सिर्फ होता क्या है कि जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो अल्लाह ताला हमारी आंखें खोलता है, हम रो धो के अपने पिछले गुना माफ कराते हैं, फिर आगे नेकियां करते हैं, लेकिन हमारे शौहरों की स्पीड बहुत सुस्त है। अब क्या करें, घर तोड़ लें, अब क्या करें, इस उम्र में किधर जाएं, जाएं तो किधर जाएं। आप उनको वही करें जो आपके साथ हुआ, सब्र करें, दुआ करें, दुआएं मांगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन। सूरह फुरकान के आखिरी रुकू की ये दुआ है, पारा नंबर 19 में आप पढ़ सकते हैं अगर देखना चाहें। इसी तरह कुरानी दुआओं में भी मौजूद है। फिर इसी तरह से आप देखिए, उसको समझाएं, कौले बलीग करें। कुफार के दिल में भी इस किताब ने हरकत पैदा कर दी, हम तो मुसलमान हैं, फिर आप उसकी सोसाइटी बदलें, किसी अच्छे ब्रदर को उनसे मिलाएं, किसी शहर में रहने वाले इमाम साहब, मस्जिद के लोग हैं, उनसे बात कराएं, और अगर आपको लगता है कि कोई खास पर्सन है, कोई खास माहौल है, तो उधर से जान छुड़ाएं और उम्रे पे चले जाएं कुछ अरसा रहे, यानी फिजिकली आप कुछ मेयर्स लें। खामोश रहना कि अच्छा देखना एक मौजजा होगा और इनका दिल बदल जाएगा, नहीं। और इब्तिदा होती है 5 वक्त की नमाज से। अगर अकीदा ठीक है लेकिन गंदगी आ चुकी है, तो 5 वक्त की नमाज प्यार से, मोहब्बत से, चले मिलके पढ़ते हैं, चले मैं भी पढ़ूंगी, आप पढ़े, चले आप जमात कराइए, बच्चे भी साथ पढ़ेंगे, चले मिलके मस्जिद जाते हैं। एक औरत को अल्लाह ने बहुत समझ दी है, इसलिए घर तोड़ने से पहले पूरी तरह इसलाह कीजिए, क्योंकि आपने यहां दुनिया का घर तो तोड़वा लिया, उस शख्स की जहन्नम होगी। तो शौहर बीवी को एक दूसरे को दीन पे लाने में बहुत मदद करनी चाहिए, और आप नोट करेंगे कि बाज दफा सिर्फ इग्नोरेंस होती है, माँ बाप ने बताया ही नहीं है, भाई बहनों ने बताया नहीं, आगे हालात बिगड़ गए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं कि कैसे औरतों ने अपने बिगड़े हुए शौहरों की इसलाह की थी। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि किसी को भी इस आजमाइश में ना डाले, अगर वो पढ़ चुका है तो उसको अच्छे तरीके से टैकल करें, जज्बाती होने, जोश में आने और गलत बातें करके बात को और बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद फरमाया, वलन तस्तति वन तादिल बैनन निसा, अब अगर एक मर्द है उसकी एक से ज्यादा बीवी है तो क्या उसके साथ होगा, इसकी तरफ इशारा है। फरमाया, बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, यानी इट्स नॉट पॉसिबल कि दो बीवियों के साथ बिल्कुल एक सा ही ताल्लुक रखो, क्योंकि ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए काफी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो, अल्लाह से डरते रहो, तो अल्लाह ओवरलुक करेगा, यानी चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर जौजैन एक दूसरे से अलग हो ही जाएं, तो अल्लाह अपनी वसी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज देगा। अल्लाह का दामिन बहुत कुशादा है और वो दानव भी ना है, आसमान और जमीन में जो कुछ वो सब कुछ अल्लाह का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी, इन्हें भी हमने यही हिदायत की थी, और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि अल्लाह से डरते हुए काम करो, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो। आसमान और जमीन की सारी चीजों का मालिक अल्लाह ही है, और वो बेनियाज है और हर तारीफ का मुस्तहिक है। हाँ, अल्लाह ही मालिक इन सब चीजों का जो आसमानों में है और जमीन में। 3 सेकंड तक जरा इस पर गौर करें, सब कुछ आसमान और जमीन में, क्या क्या आता है उसमें। बड़ी चीजों से ना शुरू करें, दुनिया की सबसे छोटी चीज से शुरू करें, और वो कौन है, मैं अल्लाह की हूं, मेरे पे अल्लाह का इख्तियार है, मेरा अल्लाह मुझे जिंदा रखे मारे, कल उठूं तो आंखें ही ना हो, आंखें हो तो देखे ना, क्या नहीं मुमकिन, कल उठूं तो मेरे कान सुनने से इनकार कर चुके हो, मैं बोलने लगूं तो मेरी जुबान कट जाए, कल खबर मिले मेरे जिस्म में कोई बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्या नहीं मुमकिन। तो जिस रब की इतनी जरूरत हो, क्या मैं उसकी नाफरमानी करूंगी। देखिए, हम बहुत सारे कामात को अकल पे लेते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जो दिल पे लेने से तब्दीली आती है वो अकल पे लेने से नहीं आती। अकल ने तो बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हमें समझा दिए कि ये भी हराम है, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन मानते क्यों नहीं, क्योंकि अभी दिल नहीं आया। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारा दिल बदल दे। अपनी दुआ में ये दुआ शामिल करें कि अल्लाह मसर्रिफ कल्बी अला दीनिक, या मुकल्लिब अल कुलूब सर्रिफ कल्बी अला दीनिक। इताअत पे जितना ज्यादा अल्लाह सुबहान तला से दुआएं मांगेंगे, आप देखेंगे अल्लाह तला उतना ही आपके लिए आसान भी कर देगा। और हकीकत है कि अपने बच्चों के, अपने प्यारों के दिलों को पकड़ने की जरूरत है। पर दिल का इलाज किस चीज में है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आजकल रमजान के दिन इनको वेस्ट ना करें, आप अपने हस्बैंड और अपने भाइयों को थोड़ा सा इस चीज पे तैयार करें। देखिए, कमाते तो अब सारा साल है, रमजान में थोड़ा कम कर लें, जॉब आवर्स हैं, उसके बाद आप कुछ और करते हैं, आप छोड़ दें, आए बैठ के कुरान पढ़ते हैं। अब आप सुन रहे हैं ना, कितना मुख्तसर सा हम कुरान की डिटेल्स को ले रहे हैं ना, सिर्फ तर्जमा है, हल्का सा उनको भी सुना दें, किसी भी तरह, किसी का इंग्लिश का, उर्दू का, जो जुबान उनको आती है, कि हमारे घर वाले इससे महरूम रहे। क्योंकि अभी तो आगाज हुआ है, 5 पारे अभी हुए हैं, अभी 1:6 पीछे पड़ा हुआ है कुरान। आपका दिन ब दिन शरह सदर होगा और जो ही आपके आंसू आपके अपने पुराने गुनाहों को धुलाएंगे, अगला गम आपको अपने बच्चों का और अपने घरों का पड़ेगा, शोहरों का। फिर बाद दफा दूरियां बनती हैं, बाद दफा परेशानी है, आज साथ चले। मैं अक्सर कहती हूँ ये जुमला कि नेकियों का सफर तन्हा नहीं शुरू करना, घर वालों को साथ लेकर चले। और मुझे ऐसे लगता है कि गाड़ी से अगर तशबीह दें ना, तो औरत जो है वो स्टेयरिंग पे बैठी हुई है। सच्ची बात है, हम कहने को कहते हैं कि हमारे मर्दों का रोब है और उनकी बात चलती है, लेकिन हकीकत में औरत का होल्ड है, मर्द उसके साथ वाली सीट पे बैठा है, पिछली सीट पे आपके बच्चे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने गाड़ी का रुख जन्नत की तरफ मोड़ा तो आपके मियाँ सब कहीं और मोड़ लें और आपके बच्चे कि हम तो इस दुनिया में खुश हैं। सबको एक तरफ जाना है, तो प्यार से रो के धो के कैसे करें, जवान बच्चों को आज बिठाएं, शाम को बिठा ले। याद रखिए, जिंदगी को कीमती समझें, लम्हों को इस्तेमाल करें, गिना ना करें कितना बोला कितना सुना है, आज सुन लिया 3 घंटे, वो घंटे गिनिए जिसमें कुछ नहीं किया। लोग कहते कैसे आप 2-3 दफा बोलेंगे, मैं कहती हूँ कैसे नहीं बोलूंगी, इतनी जरूरत है, लोग इतनी तड़प रखते हैं, प्यासे हैं, तरस रहे हैं, तो मैं क्या इतनी स्टिंजी बन जाऊं। और आप देखिए कि जब आपको इस चीज का एहसास होता है ना कि हमने पैगाम आम करना है, कुन तुम खैरा उम्मत है, फिर नहीं सोते। अच्छा कारोबारी कौन होता है, हर जगह अपना बिजनेस ढूंढ लेता है, तो अच्छा दाई दीन, अच्छा मुसलमान शख्स कौन है जो नेकियों के हिस्से लेता है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इन चीजों पे इस्तकामत भी दे और खैर वाला बनाए।